कहने से मनुष्य पूछते हैं सृष्टि कैसे रची गई। इसलिए ये जरूर कहना पड़ता है कि वो त्रिमूर्ति शिव रचयिता है। शिव जयंती नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? त्रिमूर्ति शिव जयंती, क्योंकि जयंती तो साकार की मनाई जाती है। बिंदु की जयंती और मरंती का सवाल नहीं पैदा होता। शिव की जयंती तो त्रिमूर्ति शिव जयंती, तीन मूर्तियों के थ्रू। वास्तव में रचयिता के बजाय रचवाने वाला कहना ठीक है। तीन मूर्तियों के द्वारा क्या करता है? सृष्टि को रचाने वाला है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा द्वारा क्या रचते हैं? ब्राह्मण कुल रचते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ये तो एक ब्रह्मा हुआ जिसके द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना, ब्राह्मण कुल की स्थापना। फिर दूसरा ब्रह्मा क्या बताया? स्थापना किसकी? दैवी संप्रदाय की। तो अभी क्या काम हुआ है?
देवी
ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे गए हैं या देवताएं रचे गए हैं? देवता कुल रचा गया है। अभी ये तो कह नहीं सकते कि देवता कुल रचा गया है या देवता कोई बन चुका है। तो ये कार्य होना है दैवी संप्रदाय की स्थापना। शिव बाबा कहते हैं अभी तुम हो ब्रह्मा के ब्राह्मण संप्रदाय, दैवी संप्रदाय नहीं कहेंगे अभी। क्यों? क्योंकि दैवी संप्रदाय का कंट्रोलर कौन होना चाहिए? देवता, नारायण होना चाहिए ना। तो नारायण होगा तो नारायणी भी होगी। तो अभी तुम ब्राह्मण संप्रदाय ठहरे, तुम ही ईश्वरी संप्रदाय, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। बाप ब्रह्मा द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार भी समझाते हैं। मनुष्यों में बहुत मुझारा है। वो ब्रह्मा कौन जिसके चित्र बने हुए हैं, हाथों में वेद शास्त्र दिखाए गए हैं, हाथों में वेद शास्त्र ब्रह्मा ने क्यों दिखाए? ब्रह्मा के हाथों में, ब्रह्मा में तो परमात्मा शिव प्रवेश करता है, वो तो बोलता है, ज्ञान सुनाता है, उसके हाथों में वेद शास्त्र की क्या जरूरत? परमात्मा कोई वेद शास्त्र आकर के पढ़ेगा ब्रह्मा के थ्रू क्या? हाँ, ये ब्रह्मा जिसके थ्रू गीता सुनाई, सच्ची गीता, वो अलग, वो सिर्फ सच्ची गीता सुनाई, कुछ पढ़ा नहीं। और एक ब्रह्मा जिसके हाथों में वेद शास्त्र दिखाते हैं, वो चतुर्भुजी ब्रह्मा दिखाया जाता, चार भुजाओं वाला। इसका मतलब जिस ब्रह्मा के थ्रू ब्राह्मण रचे गए, वही ब्रह्मा और सरस्वती फिर प्रवेश करके जिन बच्चों में कार्य करते हैं, तो वो चार भुजा का ब्रह्मा कहा जाता है। उसके हाथ में ये वेद शास्त्र है। कौन से वेद शास्त्र? दुनियावी वेद शास्त्र नहीं, हमारी ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया के जो वेद शास्त्र हैं, वो उसके हाथ में किस लिए है? क्लैरिफाई करने के लिए। टीचर का काम क्या होता है? क्लैरिफिकेशन देना। प्रोज और पोएट्री उसको क्लैरिफाई करता है टीचर, स्टूडेंट पढ़ता है, तो पढ़ने वाला कौन और उसको क्लैरिफिकेशन देने वाली आत्मा कौन? पढ़ने वाली कृष्ण की सोल, ब्रह्मा की सोल और सरस्वती की सोल, ब्राह्मण बच्चे, ये सब है पढ़ने वाले, लेकिन उसको क्लैरिफिकेशन देने वाला? शिव बाबा को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ पढ़ाता है। तो अव्यक्त वाणी हमारी हुई प्रोज और पोएट्री हुई मुरली, जो साकार तन से पहले ही चलाई गीता माता। तो मनुष्यों में तो बहुत मुझारा है, मुझ रहे हैं। क्या मुझान होती है, उनको क्या प्रश्न पैदा होता है कि भगवान आया हुआ है तो अपनी मुरली क्यों नहीं चलाता छुट्टक मुट्टा, हमारी मुरली क्यों लेकर के पढ़ता है? जैसे दुनिया वाले पहले कहते थे, जिनका भगवान आया हुआ है तो हमारे वेद शास्त्रों का उदाहरण क्यों देता है, वेद शास्त्रों की बातें क्यों बताते हैं, वेद शास्त्रों का आधार ही क्यों लेते? तो जो आज में हुआ सो सोई का अंत नहीं होता। पैदाइश बहुत बढ़ रही है, बिच्छू पिंडन बढ़ते चले जा रहे हैं, पैदाइश में बहुत दुख देते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर भारत की ये सर्विस कर रहा हूँ, ये तुम्हारा काम नहीं है बट कंट्रोल करना, ये कार्य तो मेरा है, यहाँ तो है ही तमो प्रधान मनुष्य, 10-12 बच्चे पैदा करते रहते, क्योंकि झाड़ तो वृद्धि को पाना ही है। मतलब क्या हुआ, बाबा की दृष्टि में 10-12 बच्चे पैदा करना अच्छी बात नहीं है। फिर क्या करें, मान सतयुग में एक वारसदार होगा या ढेर वारसदार होंगे, एक और सारी प्रजा होगी, तो प्रजा तो निकालनी है ढेर और वारसदार निकालना है एक, एक बच्चा हो लेकिन शेर जैसा हो दहाड़ने वाला, जैसे बाबा अपने लिए कहते हैं गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। तो ठीक है, शिव बाबा को एक बच्चा, तो सतयुग में भी कितने बच्चे होंगे देवताओं को, बच्चा की बात, एक बच्चा होगा। तो हम भी यहाँ क्या करें है, ढेर वारसदार पैदा करें या एक पावरफुल वारसदार पैदा करें? क्योंकि वारसदार बनाने के लिए व्यक्तिगत मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए मेले मलाखड़े और प्रदर्शनी से काम नहीं चलता। मेले मलाखड़े से, प्रदर्शनी से, कॉन्फ्रेंस से, लिटरेचर से प्रजा निकल सकती है, लेकिन वारसदार तैयार नहीं हो सकता। तो एम अध्यक्ष हमारी क्या है, पहले पहले प्रजा तो अपने आप निकलेगी, जब राजा तैयार हो जाएगा तो प्रजा तो पीछे पीछे आएगी, यथा राजा तथा प्रजा तैयार हो ही जाएगी, लेकिन मेहनत किसके पीछे करनी है, वारसदार तैयार करने की। तो मनुष्य तो 10-12 बच्चे पैदा करते रहते हैं। मतलब कि जहां तक हो सके अलग अलग बैठ करके समझाना है एक एक को, व्यक्तिगत मेहनत करने में और इकट्ठी मेहनत कर देने में, योग शिविर लगाया और 10-20-50-100-150 को इकट्ठा कोर्स दे दिया, तो उससे पावरफुल आत्माएं तैयार नहीं होंगी। पावरफुल आत्माओं को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए, एक एक की बैठ करके सर्विस करना चाहिए। क्योंकि अनेकों की एक साथ बैठकर के सर्विस करेंगे तो उसमें दृष्टि का सारा क्या होगा, बिखराव हो जाएगा, एक तरह से विचार हो गया। तो बिखराव होने से क्या होगा, शक्ति क्षीण हो जाएगी। तो दृष्टि का भी बिखराव, वाइब्रेशंस का भी बिखराव, और वाचा, वाचा तो फिर वैसी ही चलेगी, जैसा जैसा बुद्धि होगा भटकता जाएगा वैसी वैसी वाचा चलेगी, क्योंकि किसी के अंदर कोई प्रश्न चलेगा, किसी के अंदर तो कोई प्रश्न चलेगा, तो उन प्रश्नों का समाधान करने के लिए वाचा भी अनेक प्रकार की चलानी पड़ी। तो बाबा भर्त्सना कर रहे हैं, सतयुग में कंट्रोल है, एक बच्चा एक बच्ची बस। तो ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो, आगे चल करके आते रहेंगे और समझते रहेंगे। गाया भी हुआ है अतिंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, संबंध तो गुप्त जोड़ा, लेकिन संबंध साकार में होता है या निराकार और आकार में होता है? संबंध तो साकार में ही होता है। सम माना संपूर्ण, बंध माना बंधन, सम माना समान, बंध माना बंधन, समान बंधन। एक मर हो एक साकार हो तो संबंध कैसे जुटेगा? एक मल्टी मिलियनायर हो और एक सड़क का फकीर हो तो संबंध कैसे जोड़ेगा? संबंध जोड़ने के लिए क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन? समानता। तुम कहते हो प्रश्न को सुदर्शन चक्र की मातृकालदर्शी पाने की कोई नॉलेज नहीं, तो वो जरूर चढ़ेंगे क्या? उनको इस बात से चिड़ पैदा हो जाएगी कि कृष्ण त्रिकालदर्शी नहीं हो सकता। अगर त्रिकालदर्शी हो तो उनको पढ़ाई पढ़ने की दरकार नहीं। शास्त्रों में भी कृष्ण का तो गुरु दिखाई दिया संदीपन, सं माना संपूर्ण और दीपन माना दीप्त होने वाला, प्रज्वलित होने वाला, प्रकाशित होने वाला। संपूर्ण प्रकाशित होने वाली आत्मा कौन सी है? शिव बाबा तो उनको अगर ये कहेंगे कि त्रिकालदर्शी श्री कृष्ण नहीं हो सकता तो वो तो चिढ़ेंगे। तीन सालों की नॉलेज कृष्ण को नहीं है, कृष्ण की आत्मा भी अभी पढ़ाई पढ़ रही है, तो वो चढ़ेंगे कि ये तो कोई नास्तिक है। कृष्ण है सभी का प्यारा, और तुम कह दे तो वो 84 जन्म ले रहे हैं, 84 जन्म के जन्म मरण के चक्र में है, तो जरूर चमकेंगे। न चमके तो अविनाशी ज्ञान यज्ञ में भिन्न कैसे पड़े? अगर वो इस बात को मान लें कि कृष्ण की 16वीं पढ़ाई पढ़ रही है, पढ़ाई पढ़ाने वाली नहीं है वो भी पढ़ने वाली है, इस बात को मान लें तो यज्ञ में विघ्न डालना बंद कर दे। विघ्न क्यों डालेंगे, क्यों डालते हैं? कौन सी दुनिया की बात है? बाहर की दुनिया की बात है, ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। ब्राह्मणों की दुनिया में ही है जो कृष्ण की सोल को भगवान समझे बैठे, भगवान का साकार रूप समझे बैठे। तो यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं, कन्याओं माताओं पर विघ्न आ जाते, बांधेली हो जाती, बांधेलियां फिर कितना सहन करती। तो समझाना चाहिए, ड्रामा अनुसार हमारा पार्टी ऐसा है, विघ्न पड़ गया फिर ये ख्याल आते नहीं चलता, चलना चाहिए कि ऐसे नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, कैसे नहीं करते है? ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, कैसे नहीं करते तो कैसा नहीं होता। ये कोई बात हुई कि ऐसे नहीं करते तो बुखार नहीं होता? हम ऐसे कह सकते हैं क्या? ड्रामा अनुसार यह किया, कल पहले भी किया था, तब तकलीफ हुई। पुराने शरीर को चक्कियां भी लगनी ही हैं, अंत तक मरम्मत होती रहेगी। ज्यादा इस शरीर की अंत तक मरम्मत होती रहेगी, क्योंकि अक्सर करके ज्ञान में आने के बाद, बाप का बनने के बाद, ये अंदर से ये प्रश्न पैदा होता है कि हम बाप के बन गए तो हमको शरीर का कर्म भोग क्यों आता है और ये जाता क्यों आने लगा? पहले कमाता था और अब जाती आने लगा। तो बाप मुरली में जवाब देते हैं, बच्चे बाप जब आते हैं तो ऐसा ज्ञान इंजेक्शन, ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं कि जन्म जन्मांतर की बीमारी बाहर निकल पड़ती है, कोई ताकत नहीं रही है। ताकत न होने के कारण कमजोर आदमी दुख भोगते हैं। दुख भोगने का कारण क्या बताया? कुछ न कुछ आत्मा की कमजोरी है जिसके कारण दुख भोगते हैं। माया कमजोरों को बहुत दुख देगी। माया किसको दुख देती है? जो कमजोर होते हैं उनको बहुत दुख देगी। हम भारतवासियों को बरोबर माया ने बहुत कमजोर किया, यही बात भूल जाते हैं। हमको कमजोर किसने किया जन्म जन्मांतर? माया ने, माया रावण ने। माया रावण आता कहां से है? हाँ, जो विदेशी आत्माएं हैं, विदेशी धर्म हैं, विदेशी धर्म पिताएं हैं, वो अपनी विदेशी संस्कृति फैलाते हैं, उसके संग के रंग में हम आते हैं, वहीं से हमारा मन बुद्धि चेंज हो जाता है। तो हम भारतवासियों को बरोबर माया ने बहुत कमजोर किया है। क्यों? विदेशियों को क्यों नहीं कमजोर किया इतना? क्यों? वो तो माया तो है ही विदेशी। अपने देशवासियों को क्यों इतना कमजोर करेगी? तो माया भी हाँ कमजोर बनाती है, बहुत दुख देगी। हम बहुत ताकत वाले थे, फिर माया ने कमजोर बना दिया, अब फिर हम उन पर जीत पाते हैं। तो माया दुश्मन भी हमारी बनती जरूर है। तो माया ने भारतवासियों को बहुत कमजोर बना दिया है। भारत को ही जास्ती दुख मिलता है, सबसे कर्जा ले रहे हैं। भारत बिल्कुल पुराना हो गया है, जो बिल्कुल साहूकार था उनको बहुत बेगर बनना है। फिर बेगर से प्रिंस। बाबा कहते हैं शरीर के भान से भी दूर खाली हो जाओ, तुम्हारा यहां कुछ भी नहीं, तो तुमको बहुत बेगर बनना पड़े। बेगर माना जिसके पास कुछ भी न हो, तन धन धाम स्वर्ग परिवार, कोई भी ताकत न रहे। तो युक्तियां भी बताते रहते हैं, जनक का मिसाल भी दिया जाता है, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, श्रीमत पर चलना है, सब कुछ सरेंडर भी कर लेना है। जनक ने सब कुछ दिया, फिर उनको कहा कि अपनी मिल्कियत तुम संभालो और ट्रस्टी होकर के रहो,
हरिश्चंद्र का भी दृष्ट जानते हैं।
सन्यासी लोग तो डराने के लिए कई कहानियां सुनाते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे रहते हैं साहूकारों के पास, तो डराते रहते हैं कि इन पैसों के तुम ट्रस्टी हो, अगर तुमने इन पैसों को काम में लगाया तो चांडाल का जन्म मिलेगा। कौन डर पाते हैं? सन्यासी लोग। यहां ये बातें नहीं है। हाँ, बाप समझाते हैं, अगर अपना कुछ बीज नहीं बोएंगे तो तुम्हारा पद कम हो जाएगा। तो फालो फादर, तुम्हारे सामने यह बैठा हुआ है, बिल्कुल ही सब शिव बाबा और शिव शक्तियों को ट्रस्टी बनाया। किसने? नहीं, बनाया किसने ट्रस्टी? ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को और शिव शक्तियों को ट्रस्टी बनाया। अब शिव बाबा थोड़े ही बैठ संभालेंगे, ये अपने पर थोड़े ही बलि चढ़ेगा, इनको माताओं पर बलि चढ़ना पड़े, इनको हैं? इनको हाँ, माताओं को तो उठाना ही है। सन्यासी लोग तो माता के लिए कहते हैं नरक का द्वार है, बाप आकर के ज्ञान अमृत का कलश माताओं को देते हैं कि मनुष्य को देवता बनाए। तो ब्रह्मा तो दो हो गए, दो प्रकार की रचना हो गई, एक ब्रह्मा से ब्राह्मण और दूसरे ब्रह्मा से
देवता।
ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म की स्थापना, वैकुंठ की स्थापना, राजधानी की स्थापना। तो बाप आकर के ज्ञान अमृत का कलश माताओं को देते हैं। कौन सी माताएं हैं वो जिनको ज्ञान अमृत का कलश देते हैं? ब्रह्मा द्वारा तो कहा गया है, सरस्वती को कलश दिया, लेकिन शास्त्रों में सरस्वती को कलश नहीं दिखाया है। किसको कलश दिखाया है? लक्ष्मी को कलश दिखाते हैं, महालक्ष्मी को कलश दिखाते हैं। अब महालक्ष्मी कहो चार भुजा वाली, या विष्णु देवी कहो, बात एक ही हो जाती, विष्णु देवता कहो। तो कलश माताओं को ही देते हैं, तो कौन कौन माताएं आ गई उसमें? जगत पिता के द्वारा परमात्मा कार्य करेगा तो जरूर जगदम्बा को निमित्त बनाएगा, और जगदम्बा है विश्व की बादशाही देने वाली, तो जगदम्बा लेने वाली भी है और फिर देने वाली भी। तो जगदम्बा तो है सारे जगत की अम्बा। सारे जगत में कितनी मनुष्य आत्माएं होती है? 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं। और लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ की है? सतयुग की। तो सतयुग में तो इतनी आत्माएं होती नहीं, तो वो है स्वर्ग की और वो है जगत की अम्बा। तो जगत अम्बा से सबको प्राप्ति होती, लक्ष्मी को भी किससे प्राप्ति होती? जगदम्बा से। वो भी विश्व की महारानी बनती है, सत्य भी विश्व की। तो बाप आकर के ज्ञान अमृत का कलश माताओं को देते हैं, तो जगदम्बा को तो नहीं दिया,
जगदम्बा को कहीं हाथ में करने से दिखाया जाता है चित्रों में है? नहीं दिखाते। लक्ष्मी को कलश हाथ में दिखाया गया है
तो कौन से हाथ में दिखाया गया है, लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में? लेफ्ट हैंड में। तो महालक्ष्मी की बात है कि जो लेफ्ट हैंड है वो ही वास्तव में जगदम्बा का रूप है और राइट हैंड से बांटना होता है। तो लक्ष्मी जब प्रत्यक्ष होती है तब वो उससे ज्ञान कलश को बांटने के निमित्त बनती है लेकिन धारण करने के निमित्त नहीं बनती। ज्यादा कठिन काम कौन सा है? उसके वजन को उठाना, इसी में बहुत मेहनत है क्योंकि गर्भस्थ की कीचड़ में रह करके कमल फूल समान बनना और फिर ज्ञान को भी उठाना, घर परिवार को भी संभालना, सो भी हद का घर परिवार नहीं, कैसा बेहद का घर परिवार। दो चार आठ बच्चे होते हैं उनको तो संभालने में मुश्किल हो जाती है, सारी बुद्धि की इकाइयां निकल जाता है, माताओं की बुद्धि बिल्कुल नकामी जैसी हो जाती, थोड़े से बच्चों को संभालने में। तो बेहद का जो परिवार होगा उसको संभालने के लिए तो कितनी मेहनत करनी पड़े, बौद्धिक मेहनत भी तो शारीरिक मेहनत भी वाचा की मेहनत भी, तो यहाँ तो बच्चे और ही बिच्छू टिंडन और जाती दुखदाई। तो बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश माताओं को देते, उनमें जगदम्बा उस कलश को धारण करती है और लक्ष्मी उस कलश का अमृत बांटती है। देते इसलिए है कि मनुष्य को देवता बनाए, लक्ष्मी को कलश नहीं दिया है। क्या कहा? बाप आकर के माताओं को कलश देते हैं, जगदम्बा होगी तो उसकी भुजाएं भी तो होंगी, जगदम्बा एक ही होगी कि जगदम्बा अनेक होंगी? अरे सहयोगी तो नंबरवार होंगी ना, तो वो भी तो जगत की माताएं बनेंगी जगत पिता के संबंध से कि नहीं बनेंगी? बनेंगी, तब तो जगदम्बा कही जाएंगी, जगत माता। अगर एक दो बच्चे की माता है या एक सेंटर की पालना करने वाली है या एक शहर की पालना करने वाली है, जोन की पालना करने वाली, तो उनको जगदम्बा कहा जाएगा? तो थोड़ी जगदम्बा कहा जाएगा। तो लक्ष्मी को नहीं दिया है कलश, इस समय यह है जगदम्बा और सत्युग में होगी लक्ष्मी। इस समय माने किस समय? संगम युग में है ये जगदम्बा जिसको ज्ञान का कलश बाप आकर के देते हैं। फिर है नंबर बार माता है, जगदम्बा का गीत कितना अच्छा बना हुआ है। कौन सा गीत? माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता, उनकी बहुत मान्यता है, वो सौभाग्य विधाता है, उनको धन कहां से मिलता है? क्या ब्रह्मा से? जगदम्बा को धन क्या ब्रह्मा से मिलता है? कृष्ण से मिलता है? नहीं, धन फिर भी मिलता है ज्ञान सागर बाप से। तो ये बड़ी गुप्त बातें हैं। तो जगदम्बाएं भी दो हो गई, एक हुई टाइटलधारी जगदम्बा सरस्वती, उसको भी कहां से मिला? यज्ञ के आदि में, मम्मा आदि में नहीं आई सरस्वती नदी, तो बीच में आती है और बीच में ही
लोप हो जाती। यज्ञ के आदि में कोई और बच्चे थे जिनके लिए बाबा कहते हैं कि मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, टीचर बनकर के बैठते थे, तो वो बच्चे देने के निमित्त बने, फिर बाद में यज्ञ में से चले गए। तो जो चले जाते हैं ब्राह्मण बन करके शरीर छोड़ते हैं, वो दोबारा फिर जन्म लेते हैं, फिर ब्राह्मण उनको बनना पड़े पूर्व जन्म का संस्कार लेकर के। तो वो यज्ञ की आदि वाली माता वो फिर निमित्त बनती और उसमें मम्मा की सोल को प्रवेश करके कार्य करना पड़ता, टाइटलधारी जगदम्बा को प्रवेश करना पड़ता। तो जो चित्र बनते हैं वो प्रवेश करने वाली आत्मा के बनते हैं या शरीरधारी के बनते हैं? जैसे इब्राहिम, क्राइस्ट और बुद्ध, ये ऊपर से आने वाली आत्मा ने जो पार्ट बजाया उसका चित्र बना, या जिस शरीर में प्रवेश किया उसका चित्र बना? चित्र तो शरीरधारी के बनते हैं। तो ये बड़ी गुप्त बातें हैं और नई बातें होने के कारण विद्वान आचार्य मुझ पढ़ते हैं। विद्वान आचार्य क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं? वो परमात्मा की वाणी सुनते हैं क्या? परमात्मा की वाणी पे तो ध्यान ही नहीं देते, वो तो मनुष्यों के लिखे हुए वेद शास्त्र पढ़ते रहते हैं। तो इसलिए वो मुझते हैं क्योंकि नई बातें, परंपरा से वो शास्त्रों को ही मांग देते आए हैं। भगवान वाच है सबके लिए, भगवान तो सबका है ना, सब धर्म वालों को कहते हैं माम एकम याद करो। किसी धर्म वाले को ये नहीं कहते। दूसरे पेज का मध्यम तो कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे कि वह वर्षा देते हैं, वर्षा बाप से मिलता है। कृष्ण ने गीता नहीं रची, न देवी देवता धर्म रचा अथवा राज्य स्थापन किया। क्या ये कार्य कोई कृष्ण ने नहीं किया? कौन सा कार्य? कृष्ण ने गीता नहीं रची। गीता कोई कागज की गीता, स्थूल गीता की बात नहीं है। गीता माता कहा जाता है, गीता पति भगवान कहा जाता है। तो क्या जड़ चीज को माता और पति कहा जाएगा? जरूरी जिस गीता माता को माता नाम दिया वो यज्ञ के आदि में कोई माता थी जिसको गीता पति भगवान ने रचा और उन रचयिता और रचना से पहली रचना हुई किसकी? कृष्ण की। कृष्ण बच्चा हुआ तो यज्ञ के आदि की ही बात है। ब्रह्मा बाबा को सिर्फ साक्षात्कार हुए, शिव बाबा ने उनमें प्रवेश नहीं किया, इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला हुआ है। इस रथ को पकड़ा कहाँ से? पूरी बंगाल से। तो ब्रह्मा बाबा को अपने साक्षात्कारों का क्लेरिफिकेशन लेने के लिए वहां जाना पड़ा, कलकत्ता। तो बीच में माध्यम बनी वो माता जिसके थ्रू प्रजापिता को वो बात सुनाई गई साक्षात्कारों की। तो प्रजापिता ब्राह्मण बन गया पहला, चोटी का ब्राह्मण, और उसमें शिव बाबा ने प्रवेश करके साक्षात्कारों का क्लेरिफिकेशन उस माता को दिया जिसका नाम जगदम्बा विख्यात होता है बाद में, सारे जगत की माँ। और वो कृष्ण बच्चे को जन्म देती है।
तो कोई कृष्ण ने गीता नहीं रची, उस गीता माता अथवा ब्रह्मा जो पहला ब्रह्मा है ऐसी लारी ब्रह्मा नहीं। ब्रह्मा न बड़ी माँ माना माँ, बड़ी माँ माना जगत माँ, उसको रचने वाला कौन? रचयिता तो साकार में चाहिए ना। तो कृष्ण की सोल के द्वारा कोई गीता नहीं रची जाती है। गीता माता की रचना राम बाप के थ्रू होती है, न देवी देवता धर्म रचे। कृष्ण की सोल के द्वारा देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना नहीं होती। क्राइस्ट के द्वारा क्रिश्चियन धर्म कहा जाता, बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म कहा जाता, तो सनातन धर्म किसके द्वारा होगा? जरूर ब्रह्मा का पहला पुत्र बड़ा जिसको कहते हैं सनत कुमार, सनत कुमार के द्वारा सनातन धर्म की रचना हुई, न कि कृष्ण के द्वारा देवी देवता सनातन धर्म रचा गया, न राज्य स्थापन हुआ। कृष्ण तो सत्युग में बच्चा बनकर के राज्य लेगा, वो राज्य स्थापन करने वाला नहीं है, स्थापन तो उसका बाप करेगा। अभी बाप राजधानी स्थापन कर रहे हैं क्या? राजधानी स्थापन करने वाला कौन? राम बाप। राम राज्य कहा जाता है, कृष्ण राज्य का, नारायण राज्य का, ब्रह्मा राज्य का, शिव राज्य का, गायन नहीं है, गायन किसका है? राम राज्य का। तो अभी बाप राजधानी स्थापन कर रहे हैं, राजयोग सिखलाते, ब्रह्मा के मुख से हजारों ब्राह्मण निकलने चाहिए। उन्हों कोई शिक्षा मिलती है किन्हों को? जो ब्रह्मा मुख से पैदा होने वाले ब्राह्मण हैं, सिर्फ तुम ब्राह्मणों को कल्प के संगम युग के समय ये शिक्षा मिलती है, बाकी सारी सृष्टि है कलयुग की। वो सच कहेंगे नहीं, वो सब कहेंगे अब हम कलयुग में हैं, और तुम कहेंगे हम संगम पर। ये बातें कहीं भी नहीं, ये नई नई बातें हैं, दिल में रखनी है। क्या कहा? कलयुग में कौन हुए और संगम युग में कौन हुए? संगम युग में वो ब्राह्मण है जो ब्रह्मा के मुख से पैदा होते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के मुख से नहीं, किसके मुख से? ब्रह्मा के मुख से। तो मुख्य बात है बाप और वर्चस्व को याद करना। अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो योग कभी नहीं लगेगा। ये ला नहीं कहता कि बाप के बच्चे बनो नहीं और तुम्हारा योग बाप से लग जाए। बाप के बच्चे कब कहे जाएं? जब ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणी बने, ब्राह्मण ब्राह्मणी माने भाई बहन। अगर वो विकारी दृष्टि जाती है, विकारी कृति होती है, तो योग कभी भी लग नहीं सकता। इसलिए इतना पद भी नहीं पा सकेंगे, क्योंकि बाप का नाम बदनाम करने वाले बच्चे बने। थोड़ा योग लगाने से भी स्वर्ग में तो जाएंगे। बाप कहते हैं अगर पवित्र नहीं बनेंगे स्वर्ग में तो भले जाएंगे, लेकिन मेरे पास नहीं आए सके, माना मेरे नजदीकी के पद नहीं प्राप्त कर सके, माला में मेरे नजदीक कमल का मणका नहीं बन सकेंगे। तब अगर पवित्र नहीं बनेंगे तब बल घर बैठे स्वर्ग में आ सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है
घर बैठे भी अच्छा पद पा सकते हैं, परंतु तब जबकि योग में रहें और पवित्र रहें। पवित्रता बिगर योग लगेगा ही नहीं, माया लगाने नहीं देगी। तो माया अच्छा काम करती है बुरा काम है? माया भी तो बाप की बेटी हुई ना, तो बाप माया बेटी को हुस्कारते रहते हैं कि देखो इसकी भाई बहन की दृष्टि नहीं है। हाँ, तो पकड़ो। तो सच्चे दिल पर साहब राजी होगा, झूठे दिल पर सच्चा साहब राजी नहीं होगा। विकार में जाते रहते, कहते हैं मैं शिव बाबा को याद करती हूँ, पति नगन करते हैं तो मैं अशरीरी हो शिव बाबा को याद करती हूँ। ये तो अपनी दिल खुश करती है, ये क्यों कहा? पति नगन करते हैं तो मैं क्या करती हूँ? शिव बाबा को अशरीर होकर याद करती हूँ। अच्छा, ये बाबा ने कहा? बाबा ने किसी कन्या माता को ऐसे कहा कि पति तुमको नगन करे तो तुम ऐसे समझो कि मैं शिव बाबा को याद करती हूँ? ये तो अपनी दिल खुश करना हुआ। बाप तो कहते हैं किसी भी तरह बर्तन माज करके भी क्या करो, पवित्र हो। मुख्य है पवित्रता। अब कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, तो कहना पड़े ना बच्चे पैदा करो। बर्थ कंट्रोल करो माना बच्चे पैदा ना करो। ये तो है ही तमो प्रधान दुनिया। अभी बाबा बर्थ कंट्रोल करा रहे हैं, तुम हो सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तो विकार की बात नहीं है यहाँ, तो दुख पर बच्चों को कितना सहन करना पड़ता है। बाबा कहते हैं बहुत परहेज रखनी है, यहाँ ऐसा तो कोई नहीं होगा जो शराब पीता होगा। परहेज किस बात की बताई खास? यहाँ ऐसा कोई होगा जो शराब पीता होगा? बाप बच्चों से पूछते हैं, क्यों पूछते हैं? तो बाप को मालूम नहीं कि ब्रह्मा कुमार कुमारी बनकर के जो रहेगा वो भी कोई शराब पीता होगा क्या? तो शराब एक होती है फूल, उस शराब पीने से भी नशा चढ़ जाता है, और एक होती है आंखों की शराब। दृष्टि किससे लेना चाहिए? दृष्टि तो लेनी है अपने बाप से, बाप की दृष्टि से ही सृष्टि सुधरेगी। हमारी दृष्टि कैसी है? हम बच्चों की दृष्टि तो पतित है, पतित बैठकर पतितों को क्या बनावेंगे? पतित ही बनावेंगे। जबकि बाबा मुरली में कहते हैं कि ये आंखें सबसे जाती धोखा देने वाली है। तो जो सबसे जाती धोखा देने वाला अंग है उसी का बैठ जाति जाति के साथ संग करना है। जिस आंख के लिए भारतवर्ष में क्या गायन है कितना ऊंचा, कि भारत की सीताएं सावित्रियां रावण जैसे पर पुरुष के सामने कभी आंख उठा करके भी उन्होंने नहीं देखा, उसी भारत के देश में योग के नाम पर इन देहदारी गुरुओं ने ये क्या करवाई दिया? तो यहां तो ऐसा कोई नहीं होगा जो शराब पीता होगा। बाप बच्चों से पूछते हैं, अगर झूठ बोलेंगे तो धर्मराज की कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। अभी बात किसकी हो रही थी? पवित्रता की। पवित्रता की बात पर शराब के ऊपर कहां से आ गए? क्योंकि कनेक्शन है। पवित्रता माना आपस में भाई बहन। जब भाई बहन हो गए तो दृष्टि कभी करप्ट होनी नहीं चाहिए, क्योंकि शराब जो है वो भी कड़ाके बनाई जाती है। कोई चीज होती है तो उसको क्या करते हैं? कड़ाई देते हैं, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो ऐसे ही जो चीज मिक्सचरिटी वाली होती है उसमें भी जैसे कीड़े पड़ जाते हैं। प्योरिटी और मिक्सचरिटी में बहुत अंतर है। सचुग में राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबेगी, तो वहां दृष्टि कैसी हुई? पवित्र दृष्टि। और द्वापर युग से कैसे हो जाती? अपवित्र हो जाती, क्योंकि व्यभिचार पैदा हो जाता। तो बाप पूछते हैं, भगवान के आगे सच बोलना चाहिए। जरा भी शराब कोई कारण से अथवा दवाई की रीत से पीते तो नहीं है? हैं? कोई ने हाथ नहीं उठाया, बाबा ने पूछा और कोई ने हाथ नहीं उठाया कि हम शराब पीते हैं। यहां सच जरूर बोलना है। कुछ भी भूल होती है तो फिर से लिखना चाहिए, बाबा मेरे से ये भूल हुई, माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा को तो बहुत लिखते भी हैं, आज हमारे में क्रोध का भूत आया, थप्पड़ मार दिए। तो बाबा आपकी तो माता है, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। दिखलाते हैं कृष्ण को ओखली से बांधा, यशोदा माता ने मारा नहीं, क्या किया? ओखली से बांधा। ये तो सब झूठी बातें हैं, हैं? कृष्ण जैसे बच्चे को ओखली से क्यों बांधेगी माता? बच्चों को प्यार से शिक्षा देनी चाहिए, मार नहीं देनी चाहिए, उनका भोजन बंद कर देना चाहिए, बांध देना, मिठाई नहीं देना, ऐसे उनको सुधारना चाहिए। तो कौन सी स्थूल मिठाई की बात है क्या? बार बार स्थूल मिठाई देते रहेंगे तो भी तो उनके अंदर लोभ आ जाएगा। तो कृष्ण को ओखली से बांधा शास्त्र में लिखा हुआ क्यों है? तो वास्तव में कोई स्थूल ओखली से बांधने की बात नहीं है। ओखली भी कोई चैतन्य है जिससे उनके जीवन को बांध दिया। कहते हैं यमुना नदी में जाने से काला हो गया था। क्या, कैसे काला हो गया? यमुना मैया का संग करने से काला हो गया। तब काले पड़ने की तो आदत पड़ गई। तो जो काले पड़ने की आदत पड़ गई तो वो छूटे कैसे? कैसे? कृष्ण मक्खन चुराता था, यह करता था, ये सब बातें हैं कहां की? तो कृष्ण को ओखली से बांधा, ये बात झूठी है। माना कोई स्थूल ओखली से नहीं बांधा गया। बच्चों को प्यार से शिक्षा दे दी जाती है। मारने की तो बात ही नहीं, भोजन बंद कर देना। माना कौन सा भोजन? हमारा भोजन अन्न कौन सा है? प्यार ही हमारा भोजन है, योग है। आत्मा का भोजन क्या है? प्यार, योग। योग की खुराक बंद कर दी जाए, यानी स्नेह देना बच्चों को बंद कर दिया जाएगा तो तिल में तो हम तिल मिलाते रहेंगे। बांध देना जैसे यशोदा ने क्या किया, अच्छा तुम नहीं मानते रहो? चलो बंधे रहो, मिठाई नहीं देना। ओखली से बांधने का मतलब क्या हुआ, कोई की आदत पड़ी हुई है तो उस आदत को छुड़ाने के लिए क्या किया जाता है, जो खराब आदत पड़ी हुई है उस खराब आदत को छुड़ाने के लिए उसको कोई और दूसरा खिलौना दिया जाता है, तो वो खराब चीज को छोड़ देता फिर उस खिलौने में लग जाता है। तो ऐसे ही कृष्ण को ओखली से बांध दिया। अच्छा क्यों ना मिठाई नहीं देना, मिठाई क्या हुई, ज्ञान में है मीठा बोलो, तो बच्चे जब नहीं मानते हैं तो उनसे कैसे बोला जाता है, है? सख्ती से बोला जाता है, तो सख्ती से बोलना माना मिठाई नहीं देना। तो ऐसे ऐसे सुधारना चाहिए, थप्पड़ मारना क्रोध की निशानी हो जाती है, सो भी महात्मा पर क्रोध करते हैं क्या, किस पर क्रोध करते हैं, बच्चा तो छोटा होता है महात्मा होता है, उस पर तो क्रोध नहीं करना चाहिए। हमारी ज्ञान में महात्मा को छोटे बच्चे कौन से, जो नए नए ज्ञान में चले हुए हैं वो हो गए महात्मा छोटे बच्चे, और पुराने पुराने तो जरूर महात्मा हो गए, बूढ़े हो गए। तो बच्चों पर क्रोध नहीं करना चाहिए, छोटे बच्चे महात्मा समान होते हैं, इसलिए थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, गाली भी नहीं दे सकते। क्या कहा, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो ख्याल में आए हमने ये विकर्म किया, अगर किया तो फौरन लिखना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हो गई, हमें क्षमा करो, आगे से नहीं करेंगे। तौबा भरते हैं ना, यहाँ भी धर्मराज सजा देते हैं, तौबा करते हैं, आगे हम फिर कभी नहीं करेंगे। तो बाबा बहुत प्यार से कहते हैं, लाडले सपूत बच्चे, प्यारे बच्चे, कभी झूठ नहीं बोलना, कदम कदम पर राय पूछना। तुम्हारा पैसा अब लगता है भारत को स्वर्ग बनाने में, तो कौड़ी कौड़ी तुम्हारी ही समान है, ऐसे नहीं हम कोई सन्यासियों आदि को दान पुण्य आदि करते हैं। क्या कहा, हम दान पुण्य किसको करते हैं, हम देते किसको हैं, है? हम तो बाप को देते हैं, इसलिए कि बाप हमको 21 जन्मों के लिए मल्टीप्लाई करके देगा। मनुष्य हॉस्पिटल अथवा कॉलेज आदि बनाते हैं तो उनको क्या मिलता है, कॉलेज खोलने से दूसरे जन्म में विद्या उनको अच्छी मिलेगी, वो तो एक जन्म के लिए हुआ। धर्मशाला बनाने से महल मिलेगा, यहाँ तो तुमको जन्म जन्मांतर के लिए बाप बेहद का सुख देते हैं, बेहद की आयु मिलती है, सबसे बड़ी आयु और कोई धर्म वाले की नहीं होती है। क्या कहा, सबसे बड़ी आय कौन से धर्म वाले की होती है और कौन से जन्म में होती है, जो सतयुग का सेकंड बर्थ होगा, सेकंड नारायण, उसकी आयु लंबी होगी या सतयुग के फर्स्ट गार्डन की आयु लंबी होगी, फर्स्ट गार्डन में ज्यादा लंबी आयु होगी, और फर्स्ट गार्डन का भी जो रचयिता होगा उसकी तो और ज्यादा आयु होगी। तो सचयुग में भी नंबरवार गार्डन्स हैं और नंबरवार उनके मालिक हैं, तो जो नंबरवार की स्टेज में पहुंचने वाले मालिक हैं वो जरूर दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली कच्ची आत्मा है, इसलिए उन नारायणों की पूजा नहीं होती है। भारत में सिर्फ लक्ष्मी नारायण की और विष्णु रूप की पूजा होती है, बाकी सात नारायण की कोई पूजा नहीं होती, क्योंकि उनकी आयु भी कम होती है, कलाएं भी कम होती हैं, उनकी उम्र भी कम हो जाती है। तो कम आयु भी यहाँ की गिनी जाती है। तो आप बेहद के बाप को चलते फिरते उठते बैठते याद करेंगे तो तुम खुशी में रहेंगे। कोई भी तकलीफ हो तो पूछो, बाकी ऐसे थोड़े ही गरीब होंगे कहेंगे बाबा हम तो आपके हैं, अब हम आपके पास बैठ जाते हैं। बाबा को ये भी डर लग रहा है। ऐसे तो दुनिया में बहुत गरीब है, सारे ही गरीब आकर के कहें हमको मधुबन में रहने दो, तो ऐसे तो लाख में इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये भी कायदा नहीं है क्या कि लाखों करोड़ों गरीबों को इकट्ठा करके यहाँ बिठा दो? तुमको ग्रस्त व्यवहार में रहना है। ऐसे हम किसी को रहा नहीं सकते। कैसे कि सिर्फ इतना देख लिया कि ये गरीब है इसलिए उसको रख दें, तो किसको रखेंगे फिर? हाँ, ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय। अच्छा ज्ञानी नहीं है तो क्या हो? ज्ञान नहीं है। बहुत ऐसे होते हैं जिनमें ज्ञान नहीं होता, ज्ञान सुना ही नहीं सकते। चलो और तो और, रुद्रमाला के मणके बहुत ऐसे होते हैं जो गूंगे होते हैं, समझ सब लेंगे सारा ज्ञान, लेकिन दूसरों को सुना है नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो फिर तो उनको हाँ, कोई न कोई अंग तो उनका ठीक होगा। ऐसा तो नहीं बहरे भी होंगे, अंधे भी होंगे, लूले भी होंगे, काने भी होंगे, गूंगे भी होंगे, हैं, लंगड़े भी होंगे, कोई न कोई तो शिफ्ट जरूर होगी। तो बाबा सबको नहीं रह सकते, क्योंकि सेवा जो है वो अनेक प्रकार से की जाती है। कोई जरूरी नहीं है मुख से बोल करके ही सेवा की जाए, चलन से भी सेवा होती है, दृष्टि से भी सेवा होती है। धंधे में हमेशा ईश्वर अर्थ एक दो को पैसा निकालते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा तुम गरीब हो कुछ नहीं निकालो, नॉलेज को तो समझो, मनमना बाबू हो जाओ। तुम्हारी मम्मा ने क्या किया? मम्मा ने क्या निकाला? फिर देखो वो ज्ञान में तो तीखी है, तन मन से सेवा कर रही है। मम्मा के पास धन नहीं था, कैसी सेवा की? तन से सेवा की, मन से सेवा की, इसमें पैसे की बात नहीं है। बहुत बहुत करके एक रुपया दे देना तो तुम्हें साहूकार जितना मिल जाएगा। किसी के पास है ही दो रुपए, सारी जिंदगी कमाया और कल्याण के कार्यों में लगाया तो उसके पास पैसा कहाँ बचेगा? तो जिसके पास है ही थोड़ा पैसा तो वो क्या करे? थोड़े में से थोड़ा दे दे तो साहूकार जितना मिल जाएगा। पहले अपने ग्रस्त व्यवहार को संभाल करना है क्या? बाबा ऐसे नहीं कहते अपनी गृहस्थी को छोड़ दो और यहां आकर के तुम ईश्वरीय सेवा में सारे पैसे लगा दो तो भाग्य नहीं बनेगा। भाग्य कब बनेगा? अपने घरग्रस्त व्यवहार को पहले संभालो। बच्चे दुखी नहीं होने चाहिए। क्यों? चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपने घर की संभाल करनी है, जो अपनी रचना रची है उसकी संभाल करनी है, और फिर बाद में जो कुछ बचे वो ईश्वरी सेवा। अच्छा बाप दादा, मीठी मम्मा का, याद प्यार और गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, सलाम अलैकुम, हाँ, जय हो तेरी ओम शांति।